मुंबई के एक बड़े सीसाइड व्यू वाले बंगले में घर के आगे बने लॉन में दो लोग बैठे थे। वो शगुन के मॉम डैड थे जो सुबह की चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। आपने शगुन को लेकर क्या डिसीजन लिया है, मुझे इस बारे में बात करनी थी। अब तक आपने उसके लिए जो भी सोचा मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, बट नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट हर, रचना ने कहा। हाँ, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो मैंने उसके लिए कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया। उसे खुद से रखने का मेरा फैसला बिल्कुल सही है। और ये सब करने के बावजूद वो इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लायक नहीं हुई तो, रचना ने मायूसी से कहा। मुझे पूरा यकीन है वो इस एम्पायर के संभालने के पूरे काबिल हैं। अगर फिर भी वो हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई तो हमें उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो हमारे एम्पायर को संभाल सके, नवीन ने जवाब दिया। रचना ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। शादी के बाद शगुन चाहे तो मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी संभाल सकती है, इससे उसे ये भी नहीं लगेगा कि हमने उसे कम समझा है। शगुन की माँ रचना गोयंका एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती थी। ये ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी और मुंबई और उसके आसपास में ही होने वाले इवेंट्स ही हैंडल करती थी। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। मन ही मन में यही चाहता हूँ शगुन इस लायक बन गई हो कि हमारे एम्पायर को संभाल सके। बाकी रही बात शादी की, तो एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी तो करनी ही है, नवीन गोयंका ने कहा। इसके लिए उसे तैयार भी करना होगा, वो पिछले 3 साल से घर नहीं आई है, ऊपर से पता नहीं किस हाल में रह रही है, ठीक से कॉल पर बात तक नहीं करती, वीडियो कॉल तो दूर की बात है, मैंने तो देखा तक नहीं कि वो कैसी लगती है। हमें भी अपने पास आने से मना कर दिया, कहीं हमारी शगुन किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गई। रचना की बातें उसके साथ साथ नवीन जी के मन में भी डर पैदा कर रही थी। मैं आज ही उससे बात करके उसे यहां आने का बोलता हूं, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। नवीन और रचना भी ज्यादातर भारतीय माता पिता की तरह ही थे, जहां वो अपनी बेटी को आगे बढ़ता तो देखना चाहते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी उनके लिए ज्यादा मायने रखती थी। शगुन ये बात पहले से जानती थी कि अगर वो खुद को अपने पापा का बिजनेस संभालने के लायक नहीं बना पाई तो उसे एक ऐसे लड़के से शादी करनी होगी जो उसके बजाय उसका बिजनेस संभाले। इसलिए समझदारी पकड़ते ही वो सबसे पहले खुद को इस लायक बनाने में जी जान से जुट गई। साउथ मुंबई में एक बड़ा सा विला बना था। ये अनुभव का घर था जो शगुन के घर के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था। शगुन के घर पर जहां सिर्फ उसके मम्मी पापा रहते थे, वहीं अनुभव की एक जॉइंट फैमिली थी, जहां उसके मम्मी पापा के साथ चाचा चाची, उसकी दो चचेरी बहनें और उनकी माँ सब एक साथ रहते थे। सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ थे और सुबह का नाश्ता कर रहे थे। अब तो इतने साल हो गए आशु, तुझे अनु को घर बुला लेना चाहिए, बेचारा लड़का अकेला किन हालातों में रह रहा होगा, अनुभव की दादी सुमन बोली। उनके कहते ही जैसे उसकी माँ वाणी को भी कहने का मौका मिल गया हो। उन्होंने कहा, मैं तो इन्हें ये कहते कहते थक गई हूँ मम्मी जी, कभी कभी मुझे लगता है कि ये उसके पापा ना होकर कोई पिछले जन्म के दुश्मन हूँ जो इस जन्म में बदला निकाल रहे हैं। वाणी और अपनी माँ की बात को टालने के लिए आकाश मित्तल ने बातचीत का रुख बदला और अपने छोटे भाई प्रकाश से कहा, और तुम्हारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कैसा चल रहा है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी नज़र में हो तो बताना। जी भाई साहब, ज़रूर, प्रकाश ने जवाब दिया। उनके इस तरह बात बदलने पर प्रकाश की पत्नी मीरा ने धीमी आवाज में वाणी से कहा, देखा आपने दीदी, भैया ने कितना कनिंगली बात को बदल दिया, यह सही है उनका, जब भी हम अनु को घर बुलाने की बात करते हैं वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते हैं। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं ताऊ जी, प्रकाश की छोटी बेटी खुशी ने कहा, या तो आप भैया को घर बुला दीजिएगा या मुझे भी देहरादून के किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दीजिए, इसी बहाने मैं उनसे मिल तो सकूं। वो लगभग 16 साल की थी और अनुभव के बहुत करीब थी। सब कोई अनुभव को घर बुलाने के पक्ष में था, तभी आकाश जी का साथ देते हुए प्रकाश की बड़ी बेटी अंशिका ने कहा, मैं ताऊ जी के साथ हूं, वैसे भी भैया को यहां आकर मुझसे लड़ाई ही तो करनी है, बाहर है तो कम से कम इस घर में शांति है। डाइनिंग टेबल के माहौल से साफ था कि घर का माहौल काफी अच्छा था। आकाश और प्रकाश का काम अलग था, लेकिन दोनों एक घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। अच्छा अच्छा, अब बहुत बातें हो गई, और आप लोगों की जिद भी, पिछले साल अनुभव वाणी के जन्मदिन पर यहां आया था तो इस बार भी आ जाएगा, आकाश जी के कहते ही वाणी ने फाटक से कहा। हाँ, उसे यहां आने का बोलकर आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, ये उसी का घर है, कब तक आप उसे दूर रखेंगे, अब तो वो बड़ा भी हो गया और शादी लायक भी, उसकी दादी ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। इस बार अपने जन्मदिन पर पूरे 27 साल का हो जाएगा अनु, उसे उसका काम संभाला कर जिम्मेदारियों में भी बांध देना चाहिए ताकि लड़का गलत राह ना पकड़ ले। मैं तो कहती हूँ साथ ही कोई अच्छी लड़की देखकर उसे शादी कर दो, ये फिर से शुरू हो गई। दादी हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। खैर, अच्छा हुआ इसी बहाने आज इन्होंने मेरे बजाय भाई की शादी की बात की है, अंशिका ने आंखें घुमाकर कहा। वो लगभग 23 साल की थी और अपने बड़े पापा की कंपनी में काम करती थी। शगुन और अनुभव दोनों के ही घरवाले उनकी शादी करने के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं शगुन और अनुभव खुद को अपने अपने पिता के बिजनेस संभालने के लिए तैयार कर रहे थे। रात के 9 बज रहे थे। देहरादून के एक होटल में शगुन शुभ के साथ बैठी थी। उसी होटल में उनसे कुछ दूर एक टेबल पर अनुभव प्रार्थना के साथ था। कल शगुन और शुभ के बीच जो भी बहस हुई थी उसके बाद वो उसे मनाने के लिए यहाँ लेकर आया था, जबकि अनुभव और प्रार्थना का दिन ऑफिस में काफी बिजी था। कुछ देर रिलैक्स करने के लिए वो दोनों वहां पर आए हुए थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, पहली बार मेरे पापा ने मुझे ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी लेने का बोला है। अनुभव अपने फोन में अपने पापा के कॉल हिस्ट्री निकाल कर बैठा था। उसने प्रार्थना के सामने अपना फोन किया। क्या सिर्फ 10 दिन? अभी भी वो तुम्हें सिर्फ 10 दिनों के लिए अपने पास बुला रहे हैं? मतलब अभी भी उनका तुम्हें एम्पायर देने का कोई मन नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आज से पहले पापा ने कभी इतने दिन का रुकने को भी नहीं बोला। पहले मैं जब भी घर गया था तब घर वालों से ठीक से बात करने को भी नहीं मिलता था। इस बार मेरे पास पूरे 10 दिन है। देखना, मैं अपने सभी घर वाले के मन में ये बात भर दूंगा कि पापा मुझे मेरी पोजीशन दे दें। वो पापा को प्रेशराइज करके मुझे कंपनी का सीईओ बनवा ही देंगे। अनुभव ने अपनी पूरी प्लानिंग उसके सामने रखी, जिसे सुनकर प्रार्थना भी खुश थी। वहीं कुछ दूरी पर बैठे शगुन और शुभ चुपचाप खाना खा रहे थे। शगुन को खाना खाते हुए बात करना पसंद नहीं था, बस इसीलिए शुभ कुछ कह नहीं पा रहा था। अचानक शगुन खाना खाते हुए बोली, मेरे डैड का कॉल आया था और उन्होंने मुझे नेक्स्ट मंथ घर आने को कहा है। तो वो तुम्हें गोइंका एम्पायर का सीईओ बनाने वाले होंगे? अगर ऐसा है तो मैं उनसे शादी की बात करूं? शुभ के कहते ही शगुन ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मैंने तुम्हें इस रिलेशनशिप में आने से पहले ही कहा था कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। मुझे अपनी जिंदगी, आजादी और एम्पायर बहुत प्यारा है और इसके लिए मैं किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। अभी बोल रही हूँ, आज के बाद मुझसे इस बारे में बात नहीं करना। और अगर तुम्हें शादी करने का इतना ही शौक है तो ठीक है, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। शगुन एक सांस में सब कुछ बोल गई कि शुभ को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला।
जब भी वो बाहर घूमने को आते थे तब यही होता था। जब शगुन को किसी बात पर गुस्सा आ जाता था तो वो किसी की नहीं सुनती थी। आज भी यही हुआ। वो उठी और उसने बिल के पैसे टेबल पर रखे और वहां से जाने लगी। अब मैं क्या करूं इसका और कैसे बताऊं कि मैं इसे प्यार करता हूं? मैं इससे इसका एम्पायर नहीं छीनने वाला। ये तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मैं कोई गोल्ड डिगर हूं, शुभ ने सिर पकड़कर कहा। शगुन उसके पास से काफी गुस्से में निकली थी। वहां से जाते हुए वो गुस्से में चलते हुए अनुभव की टेबल पर रखा पानी का गिलास गिराकर चली गई। उसके ऐसा करते ही अनुभव जल्दी से खड़ा हुआ और पीछे से चिल्लाकर बोला, अरे ओ बदतमीज लड़की, तमीज है भी या नहीं? ये क्या कर दिया तुमने? शगुन ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और वहां से चली गई। अनुभव ने उस बात को अनदेखा नहीं किया और वो खाना छोड़कर उसके पीछे जाने लगा। वैसे तो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समीक्षा याद से कर दीजिएगा।